संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के बारे में वर्धमान महान पिचरे हमारे उन्नीसवीं और बीसवीं गाथा चलेगी। पेज नंबर है 29। कर्म नष्ट हो गए हैं और उनकी वजह से अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गए हैं। माने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही जा रही है कि ये अरहंत अवस्था की बात है। और जैसे है ना, ये अनंत वीर्यो अहिय तेजो, अधिक तेज माने ज्ञान दर्शन से लिया है, और अनंत वीर और अनंत सुख, ये चारों चीजें अनंत चतुष्टय बोलते हैं जिन्हें, ये प्रकट हो गई हैं। इसलिए उनका ज्ञान और सुख दोनों अति इंद्रिय हो गई हैं। माने इंद्रियों के माध्यम से न उनकी ज्ञान की उत्पत्ति होती है न सुख की उत्पत्ति होती है। इस लोक में इंद्रिय सुख की कितनी भी दुख की इंद्रिय सुख, पांच इंद्रियों के भोगों से प्राप्त होने वाला सुख कितनी भी निंदा करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसको वैराग्य का उपदेश कहेंगे कि पांच इंद्रियों के विषय छोड़ो। लेकिन जब इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने की बात आएगी तो कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान भी छोड़ने लायक है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो अच्छी चीज है, वो तो कैसे ही प्राप्त हुआ हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनाने लायक ही चीज है। देखो, अपन इन आंखों से इस समय सार पढ़ते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इससे हमको ये समय सार का ज्ञान हुआ। इसकी कोई निंदा करेगा तो अपन नहीं उसे मानेंगे, लेकिन इन्हीं इंद्रियों से हम सिनेमा देखने जाएं तो उसको इंद्रियों का विषय मान करके उसकी निंदा जितनी की जाएगी सभी करेंगे, भले ही सब देखें, सब चलते इतना चलता ना, पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति किन की नहीं है। मैं बोलता हूं कि जो अभक्ष भक्षण करते हैं कि वे ही रसनेन्द्रिय के गुलाम है, जिनने अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया है तो जगत में क्या हमारे को रुचने वाले अनंत पदार्थ नहीं है जो अभक्ष न हो। माने भक्ष पदार्थ भी तो अनंत हैं और उनको हम बहुत रस ले लेकर के खा सकते हैं और अनंत पाप बांध सकते हैं। पाप बांधने के लिए अभक्ष पदार्थों का ही सेवन करना जरूरी थोड़ी है। रसनाइंद्रिय की बात करी मैंने, ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय समझ लो, कि परिस्थिति रमण में पाप थोड़ी है, परिस्थिति रमण में महापाप है, तो स्वस्थि रमण में वो भी तो स्पर्श इंद्रिय का विसर्जन सुख है, और वो भी तो पाप ही है ना। यदि ज्ञान इंद्रिय की बात है कि जो मतलब इत्र फुलेल का गंध लो उसमें ही पाप थोड़ी है, जो चंदन की सुंदर खुशबू हो और उसको हम बहुत प्रसन्न तृप्त होकर के भोगें तो वो भी तो पाप ही है ना, अल्प होगा मर्याना में होने से। ऐसे अभी चक्षु इंद्रिय का बताया ही है कि हम भले ही सिनेमा की कोई फिल्म है जो विषय के साथ वर्धक है वो ना देखें, और वहां पर श्रीपाल मैना सुंदरी नाम की फिल्म आई टीवी पे, अथवा अभी टीवी पे रामायण महाभारत आए थे, उन्हें देखने में कोई बुरा नहीं कहता था, यहां तक कि बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों ने भी देखे, ब्रह्मचारियों ने भी देखी उनको बराबर कि नहीं नहीं बोले देखना चाहिए, उसे ज्ञान होता है। और हम ऐसे तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि अब महाभारत तो कौन पढ़ने जाता है, यदि वो देखेंगे तो महाभारत संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान हमें हो जाएगा। ऐसे रामायण भी कौन पढ़ता है, वाल्मीकि की रामायण कौन पढ़ने जाएगा, लेकिन यदि हम वो देखेंगे तो थोड़ा जो राम के संदर्भ में जानकारी है वो तो हमारी बढ़ेगी ही। मतलब जो लोग जिनके धर्म में महाभारत और रामायण है वो तो उसे महाधर्म मानते ही हैं, वे तो उसमें राम का पाठ करने वाले को भी पूजने लग जाते हैं, और सच्चे हृदय से। दक्षिण भारत में पिछले मैं देख रहा हूं 30-40 वर्ष से सब अभिनेता ही वहां के नेता बन गए हैं, उन्हीं को वोट मिलता है। और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामा राव था ना यहां का आंध्र का, वो भी राम का शिवजी का ऐसे ही पाठ करता था, और वहां रामचंद्रन था कहां तमिलनाडु में, रामचंद्रन जो अभी जो कोई लेडीज है ना उसको उसका पति था वो, मतलब दोनों राम का पाठ करने वाले वहां जीते और उन्होंने नेताओं को हरा दिया, जो गांधी जी के समय जैसे तपस्वी जैसे नेता थे जो है ना, कई नाम कामराज वगैरह थे हैं, जो बहुत मतलब वो नेता भी तपस्वियों से कम नहीं थे, जैसे गांधी जी की प्रतिष्ठा है ऐसी उनकी वहां प्रतिष्ठा थी। लेकिन अभी तक फिर वहां अभिनेता हैं, करुणानिधि भी अभिनेता ही थे, ये जो अभी मुख्यमंत्री है वो भी अभिनेता ही है, मान वे लोग राम कृष्ण का पाठ करने वाले इतने अंदर से प्रवेश कर जाते हैं वो, ये पूजने से भी ज्यादा हो गया ना। लेकिन वो भी नहीं, लेकिन हमारे भी जो हम उनको गीत में छात्र मानते हैं और उनकी एक बात को जो है वो सत्य नहीं है ऐसा मानते हैं, वे भी त्यागी तपस्वी और ब्रह्मचारी सबने वो देखे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि नहीं मुनिराज उन्होंने देखे, मुझे पता भी नहीं है कि देखे कि नहीं देखे, और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, कहना ही ना। लेकिन उसमें हम कुछ धर्म मान लेते हैं, लेकिन ये जो गाथा है वो ये बता रही है कि वो सब पांच इंद्रियों के विषय हैं, पांच इंद्रियों के विषय पने में कोई फर्क नहीं है। अब थोड़े आगे और बढ़ो कि अपनी पंच कल्याण की प्रतिष्ठा वो तो बिल्कुल जो है ना जाके देखते इंद्र बनते हैं, राजा बनते हैं, हैं वो सब जो जो बनते हैं वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा में धर्म कौन नहीं मानता, उसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं वो भी, और जो देखते हैं श्रद्धा से, हमारा पांच दिन का समय गया तो हम समझते चलो ये धर्म में तो गया, बाकी तो धंधे में जाता है ना, उसको धर्म में काट नहीं मानते। अब वो भी पांच इंद्रियों का एक विषय है, और हम तो आजकल तो और पांच इंद्रियों के विषय में हम प्रस्तुत करते जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया नृत्य प्रस्तुत करते हैं, फिर ये करते हैं। एक मर्यादा और भंग करी उसने हमारी, जो निम्न निम्न कोटि के लोग नाचने गाने का धंधा करते थे और उससे ही हम देख करके संतुष्ट हो जाते थे, अब इसमें कुलांगनाएं और बड़े बड़े पुरुष वो नाचते, नाचना नाचना तो वही है ना, और फिर उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं कला का वो सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही हाव भाव करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं जिस तरह की से, वो सारी चीजें नहीं होती है, बोलो, और हम उसे धर्म मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं सारे पांच इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन पांच इंद्रियों के विषयों में हम सबकी एक सी निंदा नहीं कर सकते, पांच इंद्रियों के विषय हैं और ये छोड़ना लायक हैं, इसलिए हमें इनको छोड़ना चाहिए। ये हमारे चित्त को नहीं जमती है, इंद्र तक तो नाचता है, तो इंद्र नाचता है पर अहिमेंद्र नहीं नाचते हैं, तो बड़ा कौन है? सरवार सिद्धि के अहिमेंद्र है कि तुम्हारा सो धर्मेंद्र है? बोलो, तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो ना, तो वो पंच कल्याणक में तक नहीं आते हैं, तो नहीं आना अच्छा हुआ कि आना जनों कल्याण खूब उछल उछल करके नाचना, सौधर्म इंद्र भी नाच रहा है, तो फिर लोकांतिक देव नहीं नाचते हैं, नहीं आते हैं, तो कौन है महान? लेकिन हम इतने महान हैं कि उनको भी महान मानते रहेंगे, आने वालों को भी और नहीं आने वालों को भी महान मानते रहेंगे। मैंने पांच इंद्रियों के विषय में तो सब आ गए ना, लेकिन इस नाम से जो पर्दा, सिनेमा का पर्दा देखने में पाप समझते हैं, सिनेमा हॉल में जाने से पाप समझते हैं, उस उधर को जाए कोई ना तो वो ऐसा ऐसा समझता है जैसे कोई वेश्यालय में गया था और पकड़ा गया हो। थोड़ी प्रतिष्ठा हो पंडित नाम की, किसी भी नाम की, जाकर के और वहां जाकर के भाई मान लो हम गए और हमें कोई वहां मिल जाए तो हमें संकोच होता है, उसे संकोच होता है। पंडित जी ने देख लिया, अरे भाई वहां एक ही जगह तो दो ही मिले हैं, क्या इतनी जगह तो दो ही मिले हैं। मैंने मेरे कहने का मतलब यह है कि वो सिनेमा घर उसका वो एरिया वही रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब क्या बोलता, मतलब प्रतिबंधित है हमारे लिए, लेकिन इनके नाम पर रामायण महाभारत देखने के नाम पर अथवा अच्छी फिल्म आई है, श्रीपाल मैना सुंदरी की फिल्म आई है, इस नाम पर अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी भी वे हॉल देख आए, उन हॉलों में बैठ करके भी टूट गया। लेकिन सब पांच इंद्रियों के विषय हैं। अब कह रहे एक बात आप काय के लिए कह रहे, इसलिए कह रहे कि यहां वो कह रहे हैं कि अनंत सुख जो है वो पांच इंद्रियों से उत्पन्न हुआ नहीं है, कर्ण इंद्री का विषय कि आप ही तो जानते ही हैं, ये धुन होती है गाने की और ये छंद होते हैं, अच्छी तरह से गले से बोलते हैं, तो चाहे वो बहुत बढ़िया अर्थ जिसका हो और चाहे वो गंदा अर्थ हो, लेकिन जो आदमी गले पर रींचता है वो गाने गाते हैं ना, तो उसी पर बस महावीरा महावीरा लगा दो साथ में बस, तो फिर वो धर्म हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए गाया जाता है क्योंकि वो राग ज्यादा पसंद है लोगों को, अगर हम गुनगुनाते हैं तो उसमें शब्द तो आते नहीं, धुन आती है ना, और वो हमारे लिए कर्ण प्रिय है, तो वो कर्ण इंद्री का विषय है। अगर वो गंदे गाने कर्ण इंद्री के विषय हैं और बढ़िया गाने कर्ण इंद्री के विषय नहीं है, वो ही छंद कविता बढ़िया कोई एक अच्छा गले वाला बोलता है तो हम सब खुद लीन जाते हैं, और मेरे जैसा कोई बोले तो जो आप लोग कहते हैं दादा आप रहने दो हम बोल लेते हैं, मैं तो ये स्पष्ट इंद्रिय का विषय नहीं सेवन कर रहे हैं, क्योंकि वो छंद तो बोला अर्थ तो वही है ना, और उसे गाते ही बोलना चाहिए कोई जरूरी थोड़ी है, और गाया तो अच्छे ही गले से थोड़ी जा जाता है, अच्छा गला नहीं हो वो भी तो गा सकते हैं, गाने की सारी धुन समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे पांच इंद्रियों के विषय इनसे, और एक तो हुआ ये भोगने की बात, और दूसरे हैं पांच इंद्रियों से जानने की बात। स्पर्श इंद्रिय से हम ठंडे गर्म का ज्ञान करते हैं कि एक गर्म है कि ठंडा है, नरम है कि कड़ा है ना आठ है ना, ठंडा गर्म, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा और चिकना। तो ये भी इंद्रिय का विषय है ना। मैं तो उसमें लिखा है ब्रह्मचर्य नामक लेख में कि हमने सिर्फ एक इंद्रिय के विषय मान क्रिया विशेष कोई ब्रह्मचर्य का घातक मान लिया है, जबकि विषय तो आठों ही है। अपने शास्त्रों में भी इस बात का ध्यान रखा है कि जब किसी को ब्रह्मचर्य देते हैं और वो ब्रह्मचर्य लेता है तो कहते हैं ना, एक कठोर आसन पर सोएगा, चटाई पर सोएगा, आज से ये नरम गद्दों का उपयोग नहीं करेगा, ये एसी का उपयोग नहीं करेगा। कुछ गुरुदेव श्री अंत तक उन्हें कमरे में एसी नहीं, पंखा तक नहीं लगाने दिया था, तो जब बहुत बीमार रहने लग गए और कमजोर बहुत हो गए तो उस वक्त लोगों ने लगा दिया कि आप कौन से प्रतिमाधारी हो, कौन से वृत्ति हो, तो यहाँ पर ये पंखा इतना लग सकता है, लेकिन नहीं किया जिंदगी भर। तो वो भी तो विषय है ना, ऐसा वो त्याग करते कि नहीं करते हैं, ऐसे ज्ञान इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, मान पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग होता है। अब जानने संबंधी भाग्य की बात यह है कि यही इंद्रियां हैं, यदि विषय भोगने की वजह से इन्हें पापी कहो, पाप कहो, ये पाप के अंग हैं, तो ये इंद्रिय ज्ञान के भी अंग हैं। समय सार भी हम इसी से ही पढ़ सकते देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं पांचों इंद्रिय यदि इंद्रिय सुख त्यागने योग्य है तो इंद्रिय ज्ञान भी त्यागने योग्य होना चाहिए। तो ये सारा जगत इंद्रिय सुख को कि कितनी निंदा करो, ख्याल में आए ना, तो कोई इसको ऐतराज नहीं, इंद्रिय ज्ञान के बारे में कुछ कहोगे तो दो मत खड़े हो जाएंगे, सब बोलेंगे समय साथ पढ़ना भी पाप हो गया। अरे पाप कहाँ कह रहे, हम तो इंद्रिय का विषय कह रहे, इंद्रिय का विषय यदि पाप होता है तो जो तुम जानो क्या है, लेकिन पुण्य भी हो सकता है, हमारे तो पुण्य को भी पाप कहते हैं ना, इसलिए पुण्य पाप के शब्दों में क्यों बोलते हो, लेकिन वो पांच इंद्रियों के विषय में आएगा। जैसे और लौकिक उपन्यास वगैरह आदि पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मानुभव नहीं हो सकता, वैसे ही समय सार पढ़ते पढ़ते भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जो अंतर है इनके स्वाध्याय की, जो महिमा है वो अपेक्षा वो जुदी है। यहां तो ये कह रहे हैं कि वे जो ज्ञान और सुख दो गुण हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं बोलता हूं, लेकिन जो प्रथम साल की इस शैली में ये दो ही गुण आ रहे हैं ना, वो दृष्टा नामक गुण की तो कोई बात ही नहीं करता, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, क्यों, तो दर्शन गुण में तो सम्य को मिथ्या का भेद ही नहीं है भाग्य पे, ये ज्ञान मिथ्या होता है ना वो सम्यक होता है, और चारित्र भी मिथ्या होता है सम्यक होता है, सम्मा दर्शन तो सम्यक मिथ्या होता ही है, दर्शन गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय, लेकिन दर्शन गुण में ऐसा नहीं होता, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन मिथ्या दर्शन है ऐसा नहीं है, इनमें सम्यक को मिथ्या का भेद नहीं होता, अब वो तो ज्ञान में जो जो हो जाता होता जाता है वो ज्ञान के साथ लगा रहता है, चेतना है ना, इसलिए धवल वगैरह ने तो उसे चेतना को एक ही गुण चेतना ही गुण माना है। अब वो ज्ञान के पहले जो होता है बहुत अवग्रह के भी पहले बहुत अल्पकाल जिसमें रहता है वो दर्शन है, तो उसके मुक्ति के मार्ग में कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा होती ही नहीं है। जो ज्ञाताधिष्ठा आत्म राम बात करते हैं ना, वो तो वस्तु उसका भी परिभाषा है ना, उपयोग लक्षणम, उसके हिसाब से कहते हैं। लेकिन ज्ञानानंद की बात तो हर एक ही करता है कि हमें सुख चाहिए, छड़ाला में तो वहीं से शुरू किया है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुख दें भयवंत, ये कोई नहीं कहता है कि अनंत जीव हैं, विज्ञान चाहते हैं और अज्ञान नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं कहते। जितने सेंसिटिव हम सुख दुख के प्रति हैं उतने ज्ञान अज्ञान के प्रति कहां हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लौकिक ज्ञान इसमें सम्यक मिथ्या का कुछ है ही नहीं, दो दो चार होते हैं सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी, है ना, उसके ज्ञान में ही फर्क नहीं है, मेरा मतलब कहने का, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा आनंद गुण की बात है, इसलिए आनंद गुण की बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिनके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए, पक्षीण घाति कम हो, प्रक्षीण मन नष्ट हो गए हैं घातिया कर्म जिनके, वे अनंत वर वीर, अनंत वीर अधिक तेज मन अनंत दर्शन अनंत ज्ञान और अतिंद और उनका सुख ये सब अतीन्द्रिय हो गए हैं, माने उनको इंद्रियों के माध्यम से इन सुखों की प्राप्ति, ये चार अनंत चतुष्टय की प्राप्ति नहीं होती। भागी की बात है इंद्रियां हैं और हम और तुमसे भी ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि वज्र विषम नारा सनंद की बनी हुई है दृढ़ इंद्रिया, समझे ना, भाव इंद्रियां तो राग द्वेष मिश्रित जो छयोत्सन है ना उसको बोलते हैं, तो वे तो नष्ट हो गई वीतराग होते ही, लेकिन दृढ़ इंद्रियां तो मौजूद है ना, लेकिन उनका कोई काम मौजूद नहीं है, मन आंख से देखते नहीं थे, कान से सुनते नहीं, आंख कान हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है कान से सुनना बंद हो गया है, कान से सुनते नहीं मैंने डॉक्टर को दिखाओ ऐसा नहीं, आंख से देखते नहीं दिखाई नहीं देता मैंने डॉक्टर को दिखाओ ऐसा नहीं, वे तो एकदम स्वस्थ हैं, फिर भी उनसे देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि हम ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं और हमको बिल्कुल सब एकदम स्पष्ट केवल ज्ञान जैसा ये सब हॉल में कि सब एक एक चीज दिखाई देगी, हम आंख क्यों खोलेंगे, आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है ना। तो कहते हैं जिनके इंद्रियां हैं पर इंद्रियों का कार्य नहीं रहा, अब फिर उन्होंने ये लिखा कि केवल ज्ञानी के देहगत सुख दुख नहीं है, देखा ना, सुखम च पूर्ण दुखम केवल राणस नत्थि देह गिनम, अब ज्ञान के बारे में कुछ नहीं कह रहे ना, फिर सुख को पकड़ लिया ना कि देहगत माने वही पांच इंद्रियों का पांच ये शरीर पांच इंद्रियों के अलावा क्या है, इसकी पांच इंद्रिया आंख कान नाक शरीर स्पर्शन इन सबको मिलाकर के ही तो ये सब शरीर है देह है, तो देहगत सुख दुख नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके ज्ञान और सुख अतिन्द्रिय हो गए, सिद्धांत काय को लगा रहे यही कहो ना उनका सुख अतिन्द्रिय हो गया। जब वो स्वभाव की बात करते हैं तो ज्ञान को आगे ले जाते हैं, ज्ञान और सुख अतिन्द्रिय हो गए, लेकिन जब उसकी बात करते हैं क्योंकि सामने वाले को इंटरेस्ट अकेले सुख में है, तो देह से होने वाला जो सुख दुख है वो अनंत भगवान के नहीं है, सिर्फ इतनी बात उनने इन दो गाथाओं में कही है, और इसलिए ये बताना कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, अब आत्मा का इस देह से कोई संबंध नहीं रहा। अब देखो ये अपने अपने जो शरीर है یہ اپن بولتے ہیں کہ اس کی آتمہتیا بھی ہو سکتی ہے, کوئی گولی مار کے بھی مار سکتا ہے, یہ بہت باتیں لوگوں میں چلتی ہیں. اپنے سدھانت کے حساب سے تو کرمبت بجا کے حساب سے ہی سب ہوگا, لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ارنت بھگوان یعنی دیہ اتنے آنند ویر پرگٹ ہو گیا ہے, اور دیہ میں بھی اتل بل ہے, آنند ویر اور اتل بل دونوں ہی ہیں نا. اب تو بھی وہ انت ویر کے دھنی وہ چاہیں گے ایک سمے پہلے دیہ سے چھوٹ جائیں تو نہیں چھوٹ سکتے, ایسا بھی کہہ دیتے ہیں چھوٹتے ہی نہیں ہیں. کہ وہ چاہیں تو بھی نہیں چھوٹ سکتے. ارے یہ سب باتیں ہیں, ان کی چاہے ہی ختم ہو گئی ہے, چاہیں کیا ہے نا. مطلب وستو سروپ تو اسے کہتے ہیں جو ہے, اور جتنی باتیں یہ کہیں جاتی ہیں نا یعنی چاہیں تو, یہ تو صرف کوئی کسی وششٹ چیز کی مہیما بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اندر چاہے تو جمودیپ کو پلٹ سکتا ہے. کہ آج تک انادی کال سے انت جتنے اندر ہو گئے اور جمودیپ ہے, ایک آدھ دفعہ پلٹ کے بتایا بھوشیہ میں پلٹے گا کبھی, یعنی پلٹے گا کبھی نہیں, اور نہ پلٹا ہے آج تک, تو پھر کائے کوئی موجودہ کے جمودی پلٹ سکتا ہے. شکتی ہمیں شکتی بتانی ہے, تو سبھیا شکتی اسے نہیں کہتے ہیں جو کبھی پرنمت نہیں ہو, شکتی اسے ہی کہتے ہیں جو اس روپ پرنمت ہو. پھر کوئی شکتی, جب نہرو جی سب سے دیش میں پہلے پردھان منتری بنے, کوئی دوسرا آدمی یوگ آدمی نہیں تھا کہ جو پردھان منتری بن سکتا تھا. سب کہہ رہے ایک سے ایک, اسے مہاتما گاندھی تھے, جے پرکاش نارائن تھے, فلاں تھے فلاں تھے, ایک سے ایک نہرو جی سے زیادہ یوگ سینکڑوں لوگ تھے. اب میں کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ نہیں, اور کوئی نہیں تھا. اچھا بات کرتے ہو, ابھی نریندر مودی سے یوگ کوئی نہیں ہے, اڈوانی جی نہیں ہے. ارے یوگ ہی اسے کہتے ہیں جو اس روپ پرنمت ہو, تب سمے کی یوگتا سے بولتے ہیں نا. تو وہ پرنمت نہیں ہوئے نا, وہ لوگ پردھان منتری نہیں بنے نا, تو اس کا مطلب انہیں پردھان منتری بننے کی یوگتا نہیں تھی. پرم ستیہ تو یہ ہے. اب ہم نے نوانو کا یوگتا مان لیا, بہت بڑھیا بھاشن دیتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں, لیکن بہت بڑھیا بھاشن دینا, بہت اچھا سمجھنا, اس کا نام یوگ ہے, یوگتا ہے, یہ کہاں لکھا؟ یہ سب ایک سے ایک بڑھ گئے ہیں. یعنی ایک ابھی یہاں ایک ودیارتھی پرچن کر رہا تھا, تو اکیلا وہی تھا, اور کوئی یوگ نہیں ہے یہاں یہاں پرچن کر کے بیٹھے کے پرچن کرے کہ ہاں اس سمے وہی یوگتا ہے, اس میں ہی یوگتا تھی, باقی سب سروتا کے روپ میں سن رہے تھے, جو بھی یہاں بیٹھے تھے دیوی اور ہم لوگ وہاں سے سن رہے تھے, تو ہم بھی سب سروتا, اس وقت ہم سروتا کی یوگتا والے ہی تھے. یوگتا تو اس کا نام ہے جو کارے روپ پڑھنے میں. تو اچھا اب نمت کی پیسہ, نمت کی پیسہ لے لو, تو میں کہتا ہوں کہ اس کو پردھان منتری بننے لائق پن بھی ان کی جھولی میں نہیں ہے, سمجھ گئے نا, نمت ہو گیا نا, پن کے ادے سے بنتے ہیں نا, اپنی یوگتا سے بنتے ہیں, یوگتا پڑھائی لکھائی کو جس کو بھی سمجھتے ہوں, اور نمت پن کے ادے کو سمجھتے کہ پن کا ادے ہے, تو ان کے پن کا ادے بھی نہیں تھا. سواب کے تو یوگتا بھی نہیں تھی, پن کا ادے بھی نہیں تھی, تو تم کائے کو یوگ کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں لوگ پردھان منتری بننے کے یوگ. ایک سے ایک بڑھیا ہیں تو ان کی تو لگ گئی دھوپ میں, لگ گئی صاحب, تو گاندھی جی نہرو جی کے پیچھے تھے. اس لیے بہت لوگ تو مجھے کوئی ایسا بولتے ہیں کہ تو چناؤ میں جیت گئے تھے پٹیل, انہیں کیا کتنے ووٹ تھے, ان کے زیادہ ووٹ ہو گئے تھے, اور زیادہ نہیں ان کے دو ووٹ تھے تو ان کے آٹھ ووٹ تھے, इतना अंतर था, लेकिन फिर गांधी जी ने उसको कैंसिल कर दिया और फिर इनको नेहरू जी को बना दिया। ऐसा ऐसा मैंने कई लोगों को कहते सुना है। अब उनको ये तत्व कैसे समझ में आए? मैं कहता यही सही, फिर वो सबने मान ली ना, वो गांधी जी की बात सबने मान ली ना, तो वो फिर वो नेहरू जी को 70% मत हो गया ना, फिर पटेल ने भी मान ली ना, तो अब क्या रह गया? बोलिए, वे तो सर्वसम्मति से चुनेंगे और संविधान में भी यही लिखा है, उसमें लिखा है प्रोसीडिंग में कि सर्वसम्मति से चुनेंगे। ये तो तुम्हारी तुमने निकाली है, नहीं ऐसा हुआ था, इतने हो गए थे जी, इतने पक्ष में हो गए थे, और कृपलानी उनके पक्ष में थे, फलाने जिस तुम सर्व सर्वज्ञ हो और सब बैठे हुए हो, कहां थे बैठ करके? हमारे किस किसी मूर्ख ने तुमसे कह दिया होगा और तुमने तुम और दस से कहोगे और वो चल चल पड़ेगी बात, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और उनको ही बनना था, इनको ही बनना था, हा? अरे जो बना उसको ही बनना था, वो ही बना, जो होना था वो ही हुआ। तो ये कहते हैं कि ये अधिकार खत्म हो रहा है, बस इतनी सी बात है कि शुद्धोपयोग से अनंत सुख और अनंत ज्ञान होता है। इतनी सी बात पूरे शुद्धोपयोग अधिकार में कही। अब तो उनके साथ में दो और होते हैं अनंत चतुष्टय में, अनंत दर्शन और अनंत वीर, तो उनको भी लगा लो, ख्याल में आई ना बात? सिर्फ इतनी कहना चाहते हैं, क्यों कि शुद्धोपयोग के फल में अनंत सुख और अनंत ज्ञान होता है, हमें तो वो ही बताना है, उतना ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए तुम शुद्धोपयोग धारण करो। अब वो कहते वो अनंत सुख कैसा होता होगा, वो अनंत ज्ञान कैसा होता होगा, कहते कहे हाँ सबको जानता है ये बात अलग है, और प्रैक्टिकल फिर वो इनको अपने ज्ञान में बैठ जाना अलग बात है। वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने की चीज देख रहा तो उस वक्त पीछे की कैसे दिख सकती है? केवल ज्ञान में वो क्या कहता है, हाँ ठीक है पीछे की भी चीज देखने की योग्यता उनमें है, लेकिन सामने देखता तो कैसे देख सकता हूँ? और फिर वो इतनी दूर है कि जहां हम अभी जा ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास वीजा नहीं हो तो अमेरिका हम जा ही नहीं सकते हैं, तो अमेरिका की बात कैसे जान सकता है? ऐसी बात करता है, तो उसे समझाएंगे कि वो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है। कभी कभी ऐसी बात करता है कि वो ज्ञान में इतना जानने जाएंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे आधे पागल होते हैं कि वे पहले एमए हिंदी में करेंगे, फिर संस्कृत में करेंगे, फिर अंग्रेजी में करेंगे, फिर ज्योतिष शास्त्र में कर लेंगे, फिर लिखेंगे सात विषयों में एमए। यानी इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया? क्यों कि एक विषय में एमए करने के बाद कोई भी आदमी किसी भी विषय में एमए कर सकता है, कानून से, यूनिवर्सिटी का ये कानून है। अब उसमें आपको वो एमए की योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए अलग पेपर तो बनते नहीं है। उसने बीए तक वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और फिर एमए में वो पढ़ा तो उतना ही वैसा ही जानने पर्याप्त होगा एमए जानने के लिए, और वो हर साल देता जाए एक परीक्षा, तो 80-90 वर्ष की उम्र तक भी देते रहता, 50 एमए हो सकता है। हमारे उधर चलता था, हमारे दो तीन गुरु जी थे, एक सप्त तीर्थ, एक पंचाचार्य, पांच विषयों में आचार्य थे, एक सात विषयों में तीर्थ थे, तो उसको बड़ी महिमा गाते थे, आ आ सात विषयों में तीर्थ फलाना ऐसा। अब अभी हमको कुछ नहीं लगता इसमें है क्या, तो फिर बेवकूफ क्यों कह रहे तुम? इसलिए कह रहा है कि जिंदगी के इतने समय काय को बर्बाद किया, तुम सात तीर्थ में होकर तुम्हें सात विषयों में एमए करने के बाद तेरी ग्रेड बढ़ गई ना, यानी ग्रेड तो नहीं बढ़ी, वही पूरी सेकंड ग्रेड में ही हुई, तो तूने 14 वर्ष मुफ्त में कितने जिंदगी के क्रीम गमाए, और तू हर काम तो कर नहीं सके, पहले डॉक्टरी पूरी पढ़ ली, फिर उसमें खत्म हुआ तो इंजीनियरिंग में भर्ती हो गए, इंजीनियरिंग कर लिया, फिर ऐसे ऐसे कर ले सारी जिंदगी, तो उनका प्रयोग में तो कभी नहीं, एक मरीज को तो दवा नहीं दे पाएगा, एक एक मकान नहीं बना पाएगा, काम तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसी योग्यता इकट्ठी करने से क्या फायदा, इसलिए मैं उन्हें आधे पागल के बोलता हूँ। तो पूरे पागल क्यों नहीं बोलता हूँ, अगर पूरे पागल होते तो लेकिन परीक्षा दे ही नहीं पाते। समझे ना, इसलिए आधे बोलते हैं। अरे भाई हमारा लक्ष्य केंद्र ज्ञान होना चाहिए ना, हमारा ज्ञान लक्ष्य को एक किसी बता रहे थे ना, अपना लक्ष्य में जिसमें जो आदमी एक चीज में ही रहता है तो वो कितना, एक आदमी कुर्ता सीते सीते वो कुर्ता स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक आदमी टोपी स्पेशलिस्ट हो जाता है कि टोपी कैसे बननी, ऐसी बननी, ऐसी बननी, हर एक नहीं बना सकता है, समझे ना। वो ये अहमदाबाद में तो एक आदमी है स्पेशलिस्ट इसकी, तो सब जो वहां से मंगा वहां से लाते हैं टोपी, हर एक है? अब तो वहां जाओ जो क्या है? तो हमारा कुर्ता सी नहीं, नहीं साहब कुर्ता हूँ, कुर्ता कुर्ता नहीं बना, तो तुम क्या, हम तो ब्लाउज स्पेशलिस्ट है। बहुत महिला है सिर्फ दूसरे के बिलाव से ही सीसी के अपनी आजीविका कर लेती हैं, बहुत अच्छी आजीविका कर लेती हैं, बस हैं? वो महिला उनके पास जाती हैं, उनसे बिलाव सिलाती हैं, बिलाव सीती हैं। तो एक यदि वो 10-50 चीजें में होती तो भूखों मर जाती, आजीविका के लिए एक चीज चाहिए ना, बस उसमें मास्टरी कर लो, उसमें बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो जाओ, अब बाकी तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपना काम बचे है? अपना सारा जीवन अगर आत्मा के लिए लगाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन में रहोगे गृहस्थ अवस्था में तो आजीविका तो करनी पड़ेगी ना। कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। एक वो जीविका वाली कला, उसमें हम माहिर होंगे तो हमको कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, है ना। और आप हमारे कल्याण की कला तो हमें हर एक को चाहिए ही चाहिए है, तो इसे शुद्धोपयोग अधिकार खत्म हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, बार बार ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी सी बात कही कि शुद्धोपयोग के फल में अनंत सुख और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान और अनंत सुख ही ये जीव चाहता है। सहायता तो सुख ही है और साथ में ज्ञान भी मिलता है। हमें कहते हैं वन बाय वन गेट फ्री, अनंत सुख चाहिए ना तुम्हें, तो अनंत सुख के लिए पुरुषार्थ करो तो अनंत ज्ञान मुफ्त में मिल जाएगा। और अनंत ज्ञान में प्रयत्न करो तो अनंत सुख मुफ्त में मिल जाएगा, ऐसा बोल लो। मतलब सीधी सच्ची बात यह है कि वे दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं, चारों ही, दोनों ही क्या, अनंत चतुष्टय एक साथ ही होता है, और उसके लिए जो भी पुरुषार्थ होता है वो शुद्ध, उसका नाम शुद्धोपयोग है, होता है। कि हम करें तो क्या, वहां कर्तृत्व की भावना खत्म हो जाती है, तब तो वो शुद्धोपयोग शुरू होता है। अभी अपने इसको जरा पढ़ लेते हैं, इसकी टीका, असली बात तो जो कहना थी वो आ गई। शुद्धोपयोग की इसको मैंने पढ़ के बताया था, तो मुझे पढ़वाया था ना, तीन तीन का अभी अभी आ जाएगा तुम्हारे ख्याल में। शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय हो गए हैं, सायोग श्रमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है, समस्त अंतराय का क्षय होने से जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से जिसके केवल ज्ञानो केवल दर्शन नामक तेज अधिक है, ऐसा वह स्वयंभू आत्मा समस्त मोहिनी कर्म के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ स्वयमेव सुपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख रूप होकर परिणमता है। तो बाकी सब चीजों को कारण में डाल दिया और फल में फिर वही अनंत ज्ञान और आनंद सुख को डाला, तभी आनंद दर्शन भी हुआ ना, आनंद वीर भी हुआ ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही है, क्योंकि स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है, इसलिए आत्मा के ज्ञान और आनंद भी निरपेक्ष ही होते हैं, उन्हें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, देह की अपेक्षा नहीं है, वे पूर्णता स्वाधीन हैं। आत्मा को सुखरूप और ज्ञान रूप परिणमित होने के लिए परकीरंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पहले एक बात समझ लो, फिर ये दो बातें जो दो लाइनें हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने में। आत्मा को सुखरूप और ज्ञान रूप परिणमित होने में परकीरंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, हमको अनंत सुखी होने के लिए पर को रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है कि उसके उससे होंगे, बल्कि उधर उपयोग जाएगा तो नहीं होने की बात तो आती है, लेकिन उधर उससे कुछ होगा ये रंच मात्र में पूर्ण स्वाधीनता की बात है, क्योंकि जिसके लोभ में हम पर की गुलामी करते हैं। अब ये नीचे लिखा है, जिस प्रकार तप्त लोह पिंड के विलास से अग्नि भिन्न ही है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के इंद्रियां नहीं हैं, शरीर नहीं है, इसलिए जिस प्रकार लोहे के गोले से भिन्न अग्नि को घनघात नहीं सहने पड़ते, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होते। अब ये जो उदाहरण दिया है ये एकदम उल्टा लगता है, लोक में तो ऐसा प्रसिद्ध है कि अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई, और यहां लिख रहे हैं कि उसको घन घात नहीं सहने पड़ते, और सिद्धांत भी क्या समझाया है, मैंने इसकी बहस सब पूरी इसमें लिखी है, इसलिए निकालो, तुम्हारे निकाला है तो फिर पढ़ के वही बता देता हूं, तो मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये 8-10 पेज लिखे हैं मैंने इन गाथाओं पर, देखो पेज नंबर निकालो 115 ना। अब यहां पर दिखा ना, कृष्ण हमने तो ऐसा पढ़ा है कि कर्म बिचारे कौन भूल तेरी अधिकारी अग्नि सहे घन घात, जिस प्रकार लोहे की संगति में पड़ने से अग्नि को घनों का घात सहना पड़ता है, उसी प्रकार इस आत्मा ने स्वयं को भूल कर अर्थात स्वयं की भूल से कर्मों की संगति की है, अतः अनंत दुख उठाए हैं, इससे कर्मों का क्या दोष है, मन इसने कर्मों की संगति की तो संगति तो इसने की तो गलती इसकी है, ऐसा बताना चाहते हैं। अब उत्तर देखो इसका, उक्त कथन में तो यह पाया है कि आत्मा ने देहगत दुख पाए हैं, और आप कह रहे हैं कि आत्मा को देहगत सुख दुख नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए यही उदाहरण दे रहे थे। उत्तर, अरे भाई अब इस पर ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, और दो तीन दफे घर पे पढ़ना नहीं आया समझ में तो। अरे भाई उक्त छंद में संसारी अज्ञानी आत्मा की बात है कि वो तो संसारी अज्ञानी लोहे की संगति पाई है ना, समझे ना, कर्मों के उदय की संगति किसने पाई, अज्ञानी ने, और यहां अनंत चतुष्टय रूप परिणमय सर्वज्ञ भगवान की बात है, वहां लोहे की संगति में पड़ी अग्नि की बात है, और यहां लोहे की संगति में न पड़ने वाली अग्नि की बात है, वहां घनघात सहने वाली अग्नि की बात है, और यहां घनघात न सहने वाली अग्नि की बात है, दोनों एक उदाहरण नहीं है, समझे ना, कि वो जो अग्नि लोहे की संगति में आई थी वो तो पिटी ही थी, लेकिन जो अग्नि लोहे की संगति में नहीं आई वो नहीं पिटती। यहां ये समझा रहे, इसलिए भगवान आत्मा देह की संगति में नहीं है। देह में तो है आत्मा के प्रदेश, शरीर प्रमाण ही है ना, फिर भी वो संगति में नहीं, यानी इसमें रह करके भी संगति में नहीं है और वो इसमें रह करके संगति में है। इसमें से ही दोनों निकाल रहे वो, कि यहां लोहे की संगति में नहीं रहने वाली अग्नि को पिटना नहीं पड़ता है, ये उदाहरण है, और वहां लोहे की संगति में रहने वाली अग्नि को पिटना पड़ता है, ये संगति है। एक अर्थ तो दे दो, क्लियर हो गया। अब एक और अर्थ है, देखो आगे पढ़ने देखो। यहां कर्म की संगति में पड़ने वाले सभी आत्माओं को विकार होता है, संसारिक सुख दुख होते हैं, यह कहा है। यहां माने कर्म बिचारे कौन उसमें, और यहां यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार इंद्रियों और शरीर के संयोग में होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहने वाले वीतरागियों को शरीरगत इंद्रियगत सुख दुख नहीं होता, ये निष्कर्ष निकाल रहे। उक्त छंद संबंधी उदाहरण में कर्म की बात कही गई है, और यहां शरीर की बात करके नो कर्म की बात कही गई। वहां कर्म की बात है, कर्म बेचारे कौन, और यहां नो कर्म माने शरीर, इस शरीर की बात है। इस प्रकार इन दोनों कथनों में महान अंतर है। उदाहरण की स्थूल समानता देखकर ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, यदि उनमें अंतर को बारीकी से देखेंगे तो यह सहज बात स्पष्ट हो जाएगी। आचार्य जैसे इस प्रकरण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए केवल भक्ति की, ये दूसरी बात आ गई। केवल भक्ति जानते, केवल ही भगवान का कबलाहार करते हैं, उसके इस यहां पर उसकी चर्चा आचार्य जयसेन ने बहुत की है। वो आगे मैंने कल बताया था ना, आगे आएंगी, वे काय के बारे में बताए थे, स्त्री श्वेतांबर की बात तो वो थी, वो स्त्री मुक्ति के संबंध में थी वे गाथा, और ये केवली कबलाहार संबंध में। श्वेतांबर और दिगंबरों में मुख्यतः दो ही अंतर हैं न्याय शास्त्र की दृष्टि से, केवली कबलाहार और स्त्री मुक्ति। और जितने अंतर देखने में आते हैं वो इनका ही फल है, क्योंकि जो अपने यहां आता ना इतिहास में कि वो ने कपड़े पहन लिए थे अकाल के समय, और तो उनने कहा कि जब हम 12 वर्ष तक अकाल के समय मुनि थे कि नहीं थे, कि हां थे, ये अकाल में हमने कपड़े पहने थे बस, तो हम जब 12 वर्ष तक मुनि रह सकते हैं तो अब क्यों नहीं रह सकते, समझ गए ना आप। इस तर्क के आधार पर उनने फिर कपड़े छोड़े नहीं, वे श्वेतांबर हो गए। अब एक समस्या खड़ी हो गई उनके यहां, जो नए श्वेतांबर हो गए थे, कि भैया तुम मुनि तो हो गए रहे, लेकिन 2 नंबर के रहे ना, दिगंबरों जैसे 1 नंबर के तो नहीं रहे ना, कि जिनने उस अकाल के समय भी नहीं पहने हैं वो चले गए थे, और जिनने द्वारा दीक्षा लेके नए दिगंबर हो गए उन जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, अब वे मोक्ष जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं, मोक्ष तो हम 2 नंबर के मुनि तो नहीं बनेंगे। तो उनने अपने शास्त्रों में वो सवस्त्र मुक्ति की बात कहना शुरू कर दी, कि वो वस्त्र पहने पहने भी मोक्ष हो सकता है। जब सवस्त्र मुक्ति की बात कहने लग गए तो स्त्रियों के बारे में ये था कि वे कपड़े नहीं खोल के नहीं रह सकती हैं समाज में, कपड़े खोल के नहीं रह सकती हैं, इसलिए तो उन्होंने कपड़े पे मुक्ति नहीं होती। तो वो कहते जब पुरुषों को हो जाती है कपड़े पहने पहने, तो महिलाओं को कपड़े पहने पहने क्यों नहीं हो सकती, तो वो स्त्री मुक्ति आ गई। अब स्त्री मुक्ति आ गई तो उन्होंने कहा कोई स्त्री गई है मोक्ष के, ऐसी बात नहीं बातें करोगे, तो कहानी में से 2-4 ऐसी स्त्रियां खोजनी पड़ी क्या। तो उन्होंने कहा तीर्थंकर की माता मरुदेवी जो है वो हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष चली गई थी, ان نے دو چار کو منہ کے بھیج دیا مہیلاؤں تو ہے نا, سن کی مہیلائیں تو ہو گئی لیکن تیرتھنکر نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کھوجا کہ کوئی نام جو مہیلاؤں جیسا ہو, تو ملی کماری ان نے بنا کر کے ان کو استری بنا دیا. ملی کماری کیوں کہ وہ بچپن میں ہی جلدی دیکشت ہو گئی تھی اور چھ دن میں ہی انہیں کیول گیان ہو گیا تھا, اس لیے ایسے کوئی پرسنگ نہیں ہے ان کی جیون میں کہ جس میں وہ بے پرش تھے یہ بات سدھ ہو جائے, اس لیے ان کو آسانی سے مہلا سدھ کیا جا سکتا ہے نا. اور اب وہ اس طرح سے وہ چیز پرویش کر گئی, اور ایسے ہی وہ قبلہ ہار وہ ان کے لیے ہار لے کے جاتے تھے, چھپا کے لے کے جاتے تھے. مانے وہ ایک جو دوست ہوا اس کی پشتی کے لیے پھر دوست پر دوست کھڑے ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ یعنی یہ مانتے ہیں کہ یعنی وستر کے بنا نہیں ہوگی تو پھر وہ آج کل کے زمانے میں مہیلاؤں کا زمانہ آ گیا, مہیلائیں برابری پہ برابری پہ کریں تو وہ کہتے دیکھو شیتامبر مہیلاؤں کو بھی مکتی جانے کا ادھیکار دیتے ہیں اور دگمبر نہیں دیتے ہیں, دگمبروں کے باپ کے پاس ہو ادھیکار, ادھیکار کے وہ تو وستو کا سوروپ ہے, وستو کا سوروپ ہے. کل تو تم یہ کہو کہ مہیلائیں مہیلائیں کیوں بچے پیدا کریں, آدھے پروش کو کرنا چاہیے آدھے مہیلاؤں کو, تم اس میں کیا کر لو, تو پرکتی سے جو جس کا جیسا شریر کا نرمان ہوا نہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تو اس کو انہوں نے سویکار نہیں کیا. تو اس طرح کی باتیں ہیں. امر چنداچاری نے اس کو ان کو زیادہ مہتو نہیں دیا, انہوں نے کہا اس درس کے بعد میں کیوں الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جسے سمجھنا ہوا گہرائی سے سمجھے گا. کداچت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت لوگ ان کے انکولتا میں رہے ہوں, انکولتا مانے ان کے پرجن وغیرہ سنتے ہوں, ان سے تتو گیان سیکھتے ہوں اور ایک برتھ کی بات سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہوں. سیدھی سچی بات ہے, جھگڑے کی بات ہے, کوئی الجھنا نہیں چاہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ نہیں ہم تو سدھ کریں گے. آپ یعنی بھاشا بھی پڑھو گے جیسے ان کی اور ان کی, تو وہ جو جوم کی بھاشا ہے نا, جان ٹھوک کی بھاشا, جیسے اپنے اتم چند جی کے پروچن میں آتی ہے نا, ہر جگہ چیلنج کی بھاشا کہ تمہیں یہ سدھ کر دوں گا, میں یہ سدھ کر دوں گا, میں یہ سدھ کر دوں گا, سمجھے نا. اور ابھی تم سہج بھاو سے سدھ کرو نا, وستو کا سوروپ بتاتے جاؤ تو اپنے آپ سدھ ہو جائے گی. میں تو یہ کہتا ہوں ٹوٹل مجید میں پانچ جمع ادھیا میں کتنا آکرامک ہو کے لکھا ہے, وہی باتیں آکرامک ہوئے بنا بھی لکھی جا سکتی ہیں. تو ایسا تیور ورودھ بھی ان کو سہن کرنا پڑا, کیا ہوا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ سیدھانتک ان میں مدبھید رہا ہو. اب کل وہ کہتے ہیں وہ گیان اور سکھ جو سدھوپیوگ کے پھل میں پراپت ہوگا ہوتا ہے, وہ اس کا سوروپ سمجھائیں گے. وہ گیان کے معاملے میں بہت لوگوں کو سروگتا میں شنکا ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے اتیندری گیان سروگتا کا سوروپ ہی اس میں زیادہ بتایا ہے. اور مودی گیان سدھ گیان سمیک گیان منسا گیان اس میں کوئی چرچا ہی نہیں کی, ترکالی دھرو گیان سوبھاؤ کی بھی چرچا نہیں کی. اور انت سکھ پانچ اندروں کے وشے میں کچھ لوگ سکھ مانتے ہیں, اب کہتے ہیں نا ٹھیک ہے بھیا دونوں ہی سکھ, مکتی بھکتی دا تار چوبیس جن راج پر, دیکھو یہ موکش بھی دیتا ہے بھوک بھی دیتا ہے, مکتی بھکتی دا تار. بہت سے لوگ یہ ہیں کہ سنسار کا سکھ بھی ملے اور موکش کا سکھ بھی ملے, اس سے بڑھیا کیا ہے. اپنے مول آچار یہ کہتے ہیں, مول آچار مانے مول سنت کے آچاری, کہ بھئی سکھ ہے ہی نہیں سکتا اتیندری آنند کے علاوہ, ہم تو یہ بات کا وچار کر رہے ہیں. اور تم کہ دو ہی مل جائیں تو دو ہوں تو مل جائیں, تو جو کہتے دوسرا سکھ تمہیں دکھائی دیتا رہے گا تو جو اصلی سکھ ہے اس کی طرف تم دھیان ہی نہیں دو گے, تم اسی کے پیچھے دوڑو گے, تو وہ ہے ہی نہیں, یہ بات کہی. اب اتیندری گیان کی چرچا چلے گی اور اس میں سروگتا کی بات मुख है, और सर्वज्ञता यदि हमारे गले उतर जाती है तो फिर मध्य पर्याय अपने आप हमारे गले उतर जाती है। 2 मिनट हैं अभी, लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, इसलिए मैं कहूंगा। अपन पूजा भक्ति रोजाना करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति करने वाले हैं ना, जिन्हें हम अपना विरोधी समझते हैं, भी हमें अपना विरोधी समझते हैं, लेकिन उन्हें भी जिन भगवान की वे पूजा करेंगे, वे भगवान हैं कैसे, इतना तो जानना पड़ेगा ना। तो उसमें वीतरागी सर्वज्ञ, ये तो सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सर्वज्ञ वाला ये प्रकरण चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, समझना तो पूजा करने वाले को भी पड़ेगा, नहीं तो वो पूजा भी उसकी सही नहीं होगी। क्या समझना, क्या कहना चाहते हैं, समझे ना? ऐसा नहीं कभी बोलो हम तो पूजा पाठ वाले हैं, ये जो तप चर्चा करने वालों से बात करो उसकी, वो तो ऐसी वो चीज है कि कोई भी इन्हें भगवान माने, भगवान तो क्या जानते हैं कि सब जानते हैं। आज तक तो किसी ने शंका की नहीं थी, अब आज वह उसको क्रमबद्ध सिद्ध होने लग गई ना, तो कहने लगे कैसे हो सकता, क्या हो सकता, क्या हो सकता, नहीं नहीं, नहीं जानते हैं। तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझना पड़ेगा, और खासकर इसमें ये बातें बताई, हमें इधर तक इतना ज्यादा जानेंगे तो हम बहुत थक जाएंगे, सादे समय हमें करने जैसा, तो कोई पूजा नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सारा घी अपने आप आगे झलक जाते हैं, ज्ञान को अपने स्थान से जाना नहीं पड़ता। वो सब बातें बताएंगे कि कितना सहज है, कितना सरल है और कितना संभव है, ये सारी चीजें आई सम्यक ज्ञानाधिकार में बताएंगे, जो बहुत ही आवश्यक है। अब जिस शास्त्री फाइनल वाले जा रहे हैं, भाग्य से जितने कम से कम अभी महीना भर में यहाँ हूँ, पर अब तुम भी महीने में होंगे, तुम भी भगोगे जाओगे, तो ये प्रकरण यदि समझ लो कम से कम ज्ञानाधिकार, तो बहुत अच्छा है। मैंने उसको समझ लो, मैंने तो आज कहा था कि भाई अभी इनको छुट्टी कर दो, अपनी परीक्षा की तैयारी करने दो, और मुझे भी छुट्टी कर दो, मेरी भी। लेकिन ये लोग बोले कि नहीं, कोई आपकी छुट्टी नहीं करना चाहता है, सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से चालू रखा है, तुम्हारे लिए चालू रखा है। यदि तुमको जब बोझा लगने लग जाए तो कह देना मैं बंद कर दूंगा, तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल गया है। लेकिन यदि कहोगे तो मैं अप्रैल में फिर कहीं जाना का है, और मैं मार्च में लगभग यहीं हूँ, तो एक महीना में मेरे ख्याल से हो जाएगा, अपना सम्यक ज्ञानाधिकार तो हो जाएगा।